ओम ब्रह्म सत्यम।
सहज भाए हरि सिमरन नीजो, सहज भाए हरि सिमरन नीजो,
सहज भाए हरि सिमरन नीजो, सहज भाए हरि सिमरन नीजो।
हर विश्वास अमीरस पीजो, धर विश्वास अमीरस पीजो,
धर विश्वास अमीरस पीजो, धर विश्वास अमीरस पीजो।
दुर्लभ कर भाखो मीत, दुर्लभ करम को भाखो मीत,
दुर्लभ करम को भाखो मीत, दुर्लभ करम को भाखो मीत।
सत पुरुष की रथ परतीत, सत पुरुष की रथ परतीत,
सत पुरुष की रथ परतीत, सत पुरुष की रथ परतीत।
श्वास श्वास हरि नाम चितारो, श्वास श्वास हरि नाम चितारो,
श्वास श्वास हरि नाम चितारो, श्वास श्वास हरि नाम चितारो।
दृढ़ निश्चय से तत् विचारो, दृढ़ निश्चय से तत् विचारो,
दृढ़ निश्चय से तत् विचारो, दृढ़ निश्चय से तत् विचारो।
प्रभु की आज्ञा छिन छिन समाओ, प्रभु की आज्ञा छिन छिन समाओ,
प्रभु की आज्ञा छिन छिन समाओ, प्रभु की आज्ञा छिन छिन समाओ।
कलप कल्पना सकल मिटाओ, कलप कल्पना सकल मिटाओ,
कलप कल्पना सकल मिटाओ, कलप कल्पना सकल मिटाओ।
विरत त्याग मन होए निष्कामी, विरत त्याग मन होए निष्कामी,
विरत त्याग मन होए निष्कामी,
विरत त्याग मन होए निष्कामी। सत स्वरूप मिले पार गरामी, सत स्वरूप मिले पार करामी।
सत स्वरूप मिले पार करामी। सत स्वरूप मिले पार करामी।
सहज भाए हरि सिमरन लीजो, धर विश्वास अमीरस लीजो। प्रभु का सिमरन सहज भाव से होना चाहिए। ये सहज भाव क्या होता है, ये कैसे होता है? मान लिया कोई विद्यार्थी है, उसकी परीक्षा की घड़ी आ गई और पूरे दिल से पूरी लगन से उस परीक्षा की तैयारी करने में वो जुट गया, तो आप देखेंगे कि जब तक उसकी परीक्षा नहीं हो जाती, लगातार उसकी बुद्धि में उसके मन में उस परीक्षा का महत्व बना रहता है, उसकी तैयारी की इच्छा बनी रहती है और उसमें वो लगातार लगा भी रहता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उसकी बुद्धि में उस पढ़ाई की का जो महत्व है वो स्थिर हो गया। एक दिन भी एक घंटे के लिए भी वो महत्व उसकी बुद्धि से नहीं निकलना। तो उसी प्रकार जब मैं शास्त्रों का स्वाध्याय करता हूं, सत्संग पर मनन करता हूं और सारे विज्ञान को समझकर मेरी बुद्धि का भी जब निर्णय हो जाता है कि मानव जन्म में चैन तो कभी मिलना नहीं, चाहे मैं संसार में कुछ भी क्यों ना कर लूं संसारी तरीके से, चैन मुझको मिलना ही नहीं है, ये उसकी बुद्धि का निर्णय हो जाता है। इसका मतलब है अध्यात्म पढ़कर मेरे बुद्धि में विवेक आ गया कि जो शास्त्र आपको समझाना चाह रहे हैं, नानक दुखिया कुल संसार, तो मेरी बुद्धि का निर्णय हो गया विश्लेषण करते करते सीखते सीखते कि संसार में जब तक मेरे मन में संसारी कामना है तब तक मुझको चैन मिल ही नहीं सकता, जिसको सुख कहते हैं या आनंद कह लिए या प्रसन्नता कह लिए, कोई भी नाम दे लीजिए उसको, वो मुझको प्राप्त हो ही नहीं सकता। जन्म से लेकर मृत्यु तक मेरी मानसिक बेचैनी बनी ही रहेगी। तो फिर उसके अंदर स्वाभाविक ही बुद्धि का निर्णय हो जाता है कि रास्ता जब एक ही है शांति प्राप्ति का, ईश्वर की भक्ति या ईश्वर के मार्ग को तय करना, तो क्यों ना मैं उसको उस पर निर्णय लेकर उसका निश्चय करके मैं उस पर अमल करूं और उसके लिए जीऊं। जैसे संसार का कोई लक्ष्य बनाता हूं तो उसी के लिए जीता हूं, उसी प्रकार ईश्वर भी मेरे जीवन का लक्ष्य बन जाता है, मैं उसी के लिए जीता हूं। तो वो फिर कहते हैं कि सहज भाए हरि सिमरन लीजो। तो फिर मेरा जब वो सिमरन है वो सहज स्वभाव ही होता है, कोई मुझको इसके लिए विशेष तैयारी करनी नहीं पड़ती। हर वक्त जिस प्रकार संसार का महत्व, वासनाओं का महत्व, इच्छाओं का महत्व मेरे मन में बना रहता है, तो पढ़ाई करता तो हूं मैं, लेकिन किस तैयारी के साथ कि 2 घंटे पढ़ाई करनी है इसके बाद खेलूंगा या इसके बाद मैं कुछ मौज करूंगा या किसी से बात करूंगा। तो आप 2 घंटे की पढ़ाई करते हो लेकिन वो सहज स्वभाव नहीं होती। सहज स्वभाव क्या है कि संसार का सुख भोगूंगा, ये मेरा सहज स्वभाव। इसीलिए कह रहे हैं कि धर विश्वास अमीरस लीजो, कि जब तक तेरे अंदर तेरी बुद्धि के अंदर ये विश्वास बैठ नहीं जाता, बुद्धि का फाइनल निर्णय मनन करते करते स्वाध्याय करते करते ये फाइनल निर्णय बुद्धि का हो नहीं जाता कि संसार में दुख और बेचैनी के अलावा अन्य कुछ प्राप्त होता होना नहीं है, चाहे कितने बार कितना भी पुरुषार्थ में यहां क्यों ना करूं। तो जिसकी बुद्धि का यह निर्णय हो जाता है, कहते हैं कि फिर वो सत बुद्धि बन जाती है। फिर बुद्धि नहीं कहलाती, वो उसको सत बुद्धि कहते हैं। तो ऐसी सत बुद्धि जब प्रभु का प्रेम से सिमरन करती है, उसका स्वभाव ही बन जाता है, उसको जीवन की सफलता वही नजर आती है। तो ऐसी बुद्धि क्या करती है कि अमीर अस्ती, फिर सिमरन का जो रस है, जो अमीरस है, अमीरस क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि वहां फिर इस बुद्धि को मौत का दर्शन नहीं करना, इसलिए वो अमीरस है। ऐसा रस जिसने मौत से भी मुझको मुक्ति दिला दी। तो सिमरन कोई साधारण चीज नहीं है, लेकिन इसकी तैयारी के लिए ये वाणी आपको आपका मार्गदर्शन कर रही है। सहज भाए हरि सिमरन लीजो, धर विश्वास अमीर अस्मी। तो यदि मेरी बौद्धिक तैयारी इतनी हो गई, जिस प्रकार अभी सत्संग में सुन रहे थे, किसी को जरा सा अपमान हो जाता है या किसी को मान चाहिए संसार में, तो फिर ना वो सिमरन सही रूप से कर सकता है, ना कभी जिंदगी में वो अमीर अस्मी सकता है। क्यों? क्योंकि अहंकार का संबंध इस देह से, मानव देह से इस अहंकार का संबंध। मेरी बुद्धि का निर्णय अभी तक यह भी नहीं हो पाया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव हूं। मेरी बुद्धि का यहां अपने वास्ते यह निर्णय नहीं हो पाया। तो ये बिना विवेक के, बिना मनन के ये निर्णय हो भी नहीं सकता। तो इसीलिए ज्ञान को सीख लेना एक अलग बात होती है, ज्ञान को धारण कर लेना यह अलग बात होती है। तो ज्ञान को धारण करने में तो पूरा जन्म लग जाता है, वो भी उसके लिए जो बिल्कुल अलर्ट रहता है अंदर से कि मेरा मन जो है पांच विकार में फंसा तो नहीं, मैं कहीं पांच विकार का शिकार तो नहीं हो रहा। तो वो व्यक्ति वास्तव में देखा जाए तो संसार के लिए आजादी नहीं, वो उसकी आजादी कहां है, प्रभु के लिए उसकी आजादी है। अर्थात तो दिल से बुद्धि के फाइनल निर्णय के साथ वो अंदर अपनी तैयारी कर रहा है, वो संसार के लिए नहीं जी रहा है, वो वास्तव में प्रभु के लिए जी रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये वाणी कह रही है कि हर सहज भाए हरि सिमरन लीजो, धर विश्वास अमीरस पीजो। आगे कहते हैं, दुर्लभ कर्म को भाखो मीत, सत पुरुष की रख पर दीत। कहते कि इस दुर्लभ कर्म को तू अपने जीवन में धारण कर। ये दुर्लभ कर्म है, अर्थात मानव जन्म का सबसे कीमती जो कर्म होता है उसको दुर्लभ कर्म कहते हैं। तो अब बताइए, मानव जन्म का सबसे कीमती काम है और मुझको यदि उसको उस पर चलने का सौभाग्य मिला है तो मैं कितना भाग्यशाली जीव। अब विचार करके देखो, इस दुर्लभ कर्म को करने का जिसको सौभाग्य मिला वो कितना भाग्यशाली जीव है। कहते जी, लेकिन ये कब होगा, सत पुरुष की रख पर दी। जब तेरी बुद्धि के अंदर सत पुरुष के प्रति निश्चय बना रहे, इसीलिए गुरु धारण करना पड़ता है। महाराज जी हमारे गुरु हैं, इससे क्या हो जाए। जो कुछ भी मैं शास्त्र में पढ़ रहा हूं, जो कुछ भी मैंने समझा है, उसको तो सतपुरुष ने अपने जीवन में अमल में लाया है और उसका जीवन ये बात सिद्ध कर रहा है कि यह बात सत्य है। क्योंकि महाराज जी जो समाधि में बैठे हैं, प्रेमी जो संसारी लोग हैं उनके चारों तरफ घेरा बनाए बैठे हैं, तो प्रेमियों के मन में क्या धारणा आ रही है, क्या निश्चय आ रहा है गुरु को देखकर कि काश हमको भी ये स्थिति मिल जाए। इस घोर तमोगुणी संस्कार कह लो, संसार कह लो, रजोगुणी संसार कह लो, या दुख रूपी संसार कह लो, जहां हर चीज अनिश्चित है, कुछ निश्चय है ही नहीं, तो मैं कितना बेचैन रहता हूं। लेकिन सतपुरुष जो मेरी आंखों के सामने बैठा है, उसकी समाधि लगी हुई है। समाधि का मतलब होता है कि बुद्धि उस आनंद में डूबी हुई है, उसके अंदर संसार का कोई संकल्प उठ ही नहीं सकता उस समाधि के आने। लेकिन सत्पुरुष जब उस समाधि से बाहर आते हैं तो महाराज जी की आंखें, लोग कहते थे कि हल्की सी लाल हुआ करती थी, और कई बार उनको प्रयास करना पड़ता था एक नॉर्मल स्थिति में आने में, जिसको रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे अपने शब्दों में कि जब वो शिष्यों से बात करते हैं तो उनको सात हाथ नीचे आना पड़ता है तब बात करने लायक होते हैं। क्या आनंद है, कितनी शांति है। क्या वहां कोई संसार की चिंता हो सकती है? यदि संसार की चिंता है तो बुद्धि उसमें स्थित हो ही नहीं सकती। और जिसको संसार में कुछ भी चाहिए, क्या वो वहां कभी पहुंच पाएगा? इसीलिए मानव जन्म मिला निर्वास होने के लिए, मानव जन्म मिला निष्काम होने के लिए। मैं अपने मन में कामनाएं पा लेता हूं, कोई भी कामना पा लेता हूं जो मुझे अच्छी लगती है। किसी का सम्मान हो रहा है तो मेरे मन में एक इच्छा होती है, देखो इसका कितना सम्मान हो रहा है, काश मेरा भी सम्मान इस तरह से हो। अब ये कामना पाल तो ली उसने देखकर, ये तो स्वाभाविक कामना है संसारी भाव। क्योंकि क्यों कामना उठ रही है? क्योंकि मेरी बुद्धि में यह निश्चय टूटा ही नहीं है कि मैं देह हूं। इतना ज्ञान सीखने के बाद, इतना पढ़ने के बाद मेरी बुद्धि का निर्णय यह हुआ ही नहीं कि मैं देह नहीं हूं, या यूं कह लिए कि मैं देह हूं, ये निर्णय मेरा टूटा ही नहीं। अब बताइए कौन सा ज्ञान सीखा? यदि मैं समझता हूं कि मैंने अध्यात्म विद्या सीखी है तो बुद्धि का यह निर्णय तो हर वक्त बना रहना चाहिए, ये तो कौन आपको अलर्ट रखेगा, मन के चंगुल में फंस जाओ। बुद्धि का यदि सत निर्णय नहीं हुआ तो बुद्धि हर वक्त मन के साथ है और मन के अंदर तरह तरह की वासनाओं की, तरह तरह की इच्छाओं की तरंगे उठ रही है, क्योंकि उसके संस्कार अंदर मौजूद है। जो मैंने इस जन्म में किए बचपन से लेकर आज तक, जो पिछले जन्मों में किए, उसके संस्कार मन के अंदर मौजूद है और उन संस्कारों के कारण मन के अंदर कल्पनाएं उठ रही हैं। और बुद्धि यदि अलर्ट नहीं है तो किसी ना किसी कल्पना का शिकार हो जाएगी। जो कल्पना उसको पसंद आएगी उसी के लिए वो एफर्ट शुरू कर देगी, प्रयास शुरू कर देगी। अब बताइए कि प्रभु की तरफ फिर वो बुद्धि कैसे चलेगी, वो जीव कैसे चलेगा? चल ही नहीं सकता। बहुत कुछ प्रयास किया भी होगा तो उसके पश्चात भी देखेगा कि मैं तो फेल हो रहा हूं। फिर उसने निराशा आती है, मैंने 10 साल 5 साल इतनी मेहनत करी, मेरी मानसिक बेचैनी वैसी की वैसी, अभी मुझको संसार में सफलता नजर आ रही है, करतार में सफलता नजर आ ही नहीं रही। तो जिस व्यक्ति को संसार में सफलता नजर आ रही है उसकी बुद्धि अभी सतबुद्धि नहीं बन पाई है। कि संसारी जीवन जो है वो मनुष्य जन्म का फेलियर है। संसारी जीवन मुझको मिला है किस वास्ते मिला है? मानव जन्म किस वास्ते मिला है? सत्पुरुष किस वास्ते आए संसार में? मेरे वास्ते आए। दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। दुखी जीव की पुकार सुनकर वो प्रभु कृपा करके सदगुरु के रूप में संसार में प्रकट हुए हैं, ताकि उनके जीवन को देखकर, उनकी वाणी को सीखकर मैं भी उसी प्रकार अपनी बुद्धि का निश्चय बदल सकूं। और बुद्धि का निश्चय बदल कर मैं संसार में केवल काम चलाऊं, संसार के लिए जीवन जीव नहीं, वहां अपने लक्ष्य निर्धारित ना करूं, वहां काम चलाना है। क्योंकि जीवन तो संसार में जीना है ना आपने, तो काम तो चलाना ही पड़ेगा। लेकिन निश्चय ईश्वर का, लक्ष्य ईश्वर का, तैयारी ईश्वर की, पुरुषार्थ ईश्वर का, वो बुद्धि होश में है। नहीं तो इंसानों में तो बड़े अच्छे आदमी होते हैं, किसी को दो को भी कंपेयर कर लिए, यहां जितने बैठे हैं सब आपस में कंपेयर कर लें, जितने लोग हैं उतनी वैरायटी, उतनी बुद्धि की वैरायटी है, उतनी मन की वैरायटी है, उतनी इच्छाओं की वैरायटी है, बेअंत माया है। तो इस बेअंत माया में तू चैन चाहता है तो विचार करके देख ले कि जो व्यक्ति संसार में नाम कमाने आया है वो तो मारा गया। अरे कौन सा नाम? इस शरीर का नाम जो तो है ही नहीं। बचपन में कै साल का था तू? 2 साल का था तो पहचानता है अपने आप को, फोटो देख ले। तो तू वही है, शरीर तो तेरे कितने बदल गए, कौन सा नाम करेगा तू? किसको लक्ष्य लेके चलेगा तू? मनुष्य जन्म हुआ था संसार में अपना नाम मिटाने के लिए। इसीलिए वाणी आपको निष्काम कर्म की बात कर रही है, निष्कामता की बात कर रही है। मैं कामना रखकर जीवन जी रहा, इसलिए संसार में गुरु तो बहुत बने। आज भी हिंदुस्तान में लाखों गुरु होंगे और ऐसे लाखों गुरु होंगे जिनकी हजारों लाखों की संख्या होगी शिष्यों की, लेकिन अंदर से परेशान है, अंदर से है वो संसारी से ज्यादा परेशान है, क्योंकि नाम कमाना है। आए थे हरि भजन को ओटन लगेगा पास, तो मैं मुझको पूर्ण गुरु मिला। उस गुरु की वाणी पढ़कर, उस गुरु का मार्गदर्शन सुनकर मेरी बुद्धि में ये होश आना चाहिए था, कहीं मैं भी तो संसारी जीवन व्यतीत नहीं कर रहा हूं संसारियों के तरीके से, मैं खुद ही भटक रहा हूं। तो विचार करो तो लोग मुझे क्या दे सकते हैं। मैं लोगों से आशा करता हूं, नाम भी कमाऊंगा तो लोगों के द्वारा ही तो नाम कमाऊंगा। जो खुद भटक रहा है इंसान, वो दुनिया उसको क्या दे सकती है। महाराज जी के पास लोग क्यों जाते थे, क्योंकि महाराज जी भटकते नहीं थे, वो स्थिर बुद्धि थी उनकी, वो ईश्वर में अंदर पूर्ण संतुष्ट थे, इसीलिए उनको प्रारब्ध प्रभु ने दिया। और जब महाराज जी मूलचंद की धर्मशाला में जब घर छोड़कर जा रहे थे, वहां रात को निवास किया कि अगले दिन ट्रेन पकड़कर मैं आगे चला जाऊंगा घर छोड़कर, तो प्रभु उनको अंदर से बोलकर बता रहे कि मंगत तुझको लोगों को दुखी करने नहीं भेजा गया, तू घर वालों को दुखी कर, किसी और को दुखी कर, जो भूले भटके जीव हैं उनके मार्गदर्शन के लिए तुझको भेजा गया है। अब बताइए, जो ईश्वर का पूर्ण भक्त है उसका मार्गदर्शन प्रभु खुद कर रहे हैं, और किस वास्ते कर रहे हैं, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो पूरी तरह से 100% निष्काम है, उसका मार्गदर्शन प्रभु खुद कर रहे हैं कि तुझको भूले भटके जीवों को का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया है। तो अब बताइए, महाराज जी का पूरा जीवन देख लीजिए, कहीं ऐसा लगता है कि नाम कमाने के लिए उन्होंने वाणी प्रकट की, कहीं लगता है कि नाम कमाने के लिए उन्होंने शिष्य बनाया, कहीं भी आपको ऐसा लगता है। एक बार प्रेमी उनके सामने बैठे हुए थे और प्रेमियों के मन में एक बात आ रही थी, क्योंकि संगत तो बन चुकी थी उस समय, कि महाराज जी का हमारे बिना काम तो चलता नहीं। अब गुरु को वो जानते नहीं, गुरु तो अंतर्यामी है, वो शरीर तो है नहीं, मैं अपने मन की बात जान लेता हूं, जब वो ईश्वर है गुरु तो मेरे मन की बात, मैं अपने मन की बात जान लूंगा, वो मेरे मन की बात नहीं जान पाएगा क्या, वो तो तुरंत जान ले। तो मां जी कहते, क्या कहते हैं प्रेमी, ये अंदर से किसी के नहीं है, अंदर से ये किसी के नहीं है, अरे वो सर्वव्यापक सत्ता, वो ब्रह्म, वो परमेश्वर किसका हो सकता है, वो तो सभी का है, वो तो कीड़े मकोड़ों का भी है, वो तो जानवरों का भी है, वो तो पृथ्वी का भी है। हमारे लिए पृथ्वी होगी जड़ वस्तु, लेकिन सत्पुरुष के लिए वो जड़ वस्तु नहीं। यदि पृथ्वी जड़ वस्तु होती तो फिर ब्रह्म तो द्वैत में होता, पृथ्वी में ब्रह्म नहीं होना चाहिए थे, मेरे अंदर ब्रह्म होना चाहिए, लेकिन ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, इसलिए पृथ्वी जड़ कैसे हो सकती है। हमारी दृष्टि में वो जड़ है, लेकिन सतपुरुष की दृष्टि में पृथ्वी जड़ नहीं है। तो वो सतबुद्धि का निर्णय है, हमारी संसारी बुद्धि, इसलिए हमारे निर्णय तब तक 100% दुरुस्त नहीं हो सकते जब तक अंदर मुझको आत्म अनुभव ना हो जाए। तो इसीलिए छोटा सा जीवन मिला है मानव जन्म का, मंजिल बड़ी दूर है, पुरुषार्थ बहुत करना है, तो मैं समय खराब कैसे कर सकता हूं संसारी भाव के अंदर, या निष्काम होने में मैं देरी कैसे कर सकता हूं। तो मेरा प्रोग्राम तो यही चाहिए कि मैं हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, हर वर्ष कामना धीरे धीरे मेरी कम होनी चाहिए, मैंने निष्काम होना है, प्रभु निष्काम है, इसलिए उनसे भेंट मेरी तभी हो सकती है जब मैं निष्काम होने का लक्ष्य बना लूं, तब मुझको अंतर्यामी प्रभु का आशीर्वाद, उनकी मदद मिलनी स्वयं ही शुरू हो जाएगी। यदि मेरा लक्ष्य निष्काम होना है, तो मनुष्य जन्म वासना से लड़ने के ही मिला था, मैं वासना पूरी कर रहा हूं ना, कैसा सत्संगी हूं, कैसा गुरु भक्त हूं। तो होश में बुद्धि चाहिए, इसके लिए कह रहे हैं कि श्वास श्वास हरि नाम चितारो, दृढ़ निश्चय से तत्व विचार। तो श्वास श्वास हरि नाम कौन याद करेगा, इसका मतलब हुआ कि जिस प्रकार एक विद्यार्थी जिसकी परीक्षा आने वाली है और परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो खाना भी खाता है, बाहर किसी से मिलने भी जाता है, जरूरी काम भी करता है, लेकिन उसकी बुद्धि में उस पढ़ाई का भूत सवार करता। एक मिनट भी नहीं भूलता कि मेरा एग्जाम है और मैंने घर जाकर पढ़ाई करनी है, मैंने दो मिनट भी बर्बाद नहीं करना। तो ये वही स्थिति है कि श्वास श्वास हरि नाम जपा, उसकी बुद्धि में उसके मन के अंदर उस पढ़ाई का महत्व बना हुआ है, इसीलिए निरंतर उसकी पढ़ाई की याद उसको आ रही है। संसारी कार्य काम करते हुए भी उसको याद आ रही है, खेलते हुए भी उसको याद आ रही है कि मैंने समय से ज्यादा नहीं खेलना है, फिर मैंने एग्जाम की तैयारी करनी है। तो जिसका जिसकी बुद्धि में विवेक है वो हर वक्त उस ईश्वर के प्रति अलर्ट रहता है। संसार में हर प्रकार की वासना जो उसके मन को बाहर ले जाती है उसको मिटाने की कोशिश करता है, ना कि पूरी करने की कोशिश करता है। तो ये फिर भक्त है, ईश्वर का भक्त है। गृहस्थ जीवन है या सन्यासी जीवन है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मन और बुद्धि ये सन्यासी और गृहस्थ नहीं होते। मन बुद्धि तो वैसे ही, हम शरीर को गृहस्थ में कह सकते हैं, सन्यासी जीवन की बात कर सकते हैं, ये तो जड़। तो इसीलिए मानव जन्म मन बुद्धि का जीवन है, ना कि शरीर शारीरिक जीवन है। तो कहते हैं कि श्वास श्वास हरि नाम चितारो, दृढ़ निश्चय से तत्व विचार। अब ये वो तत्व ज्ञान है, जैसे कि वाणी का हम ये मनन कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं कि दृढ़ निश्चय से, कि मैं सत्य पढ़ रहा हूं, ये मेरे जीवन का मार्गदर्शन है, मैंने इसको समझना ही है, और इसी प्रकार अपनी बौद्धिक तैयारी करनी है, बुद्धि के निश्चय बदलने हैं। तो दृढ़ निश्चय लेकर मैं इस ज्ञान को मेरे बुद्धि में हमेशा चलता रहता है। प्रभु की आज्ञा छिन छिन समाओ, कल्प कल्पना सकल मिटाओ। अब देखिए, ये भक्त के लिए राज की बात भी है, और यही वास्तव में सही रूप में मन को अंदर ले जाने वाली बात भी है। कहते हैं प्रभु की आज्ञा छिन छिन समाओ, कल्प कल्पना सकल मिटाओ। ये प्रभु की आज्ञा क्या है? क्योंकि सत्य मेरे जीवन के बारे में यह है, जिस दिन इस शरीर का जन्म हुआ, इसका जो बाहरी संसार है, शरीर और संसार जो है, ये फिक्स हो गया। मुझको नहीं पता मैं क्या पढ़ूंगा, कितना पढ़ूंगा, कहां सर्विस करूंगा, कैसे मेरा जीवन बीतेगा, मुझे पता ही नहीं इस बात। लेकिन प्रभु की दृष्टि से यदि देखो तो जन्म लेते ही तेरा पूरा जीवन फिक्स कर दिया गया है, शारीरिक जीवन तेरा फिक्स है बिल्कुल। तू स्वतंत्र कहां है फिर? तू मन बुद्धि से स्वतंत्र है। इसलिए योग वशिष्ठ ने परिभाषा की गई, महर्षि वशिष्ठ परिभाषा कर रहे हैं कि सतमार्ग पर चलने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो सतमार्ग पर कौन चलता है? शरीर चलता है क्या? मन बुद्धि चलती है। तो इसीलिए प्रभु की आज्ञा छिन छिन समाओ, कि तू सब कुछ करते हुए भी कोशिश करता है ठीक करने की, फिर भी गलतियां हो जाती, प्रारब्धवश तेरी ऐसी परिस्थितियां हो जाती, कोई तुझे करना पड़ जाता, लेकिन कर नहीं जाएगा तू। मान लिया कर भी गया तो तुरंत तेरी बुद्धि के अंदर पश्चाताप करेगा, मैंने गलत कर दिया, मैंने शास्त्र के विरुद्ध काम कर दिया, अब ये मेरी वासना को बढ़ाएगा, मेरी कामना को बढ़ाएगा, और कामना बढ़ाते मैं संसार में डूब जाऊंगा। तो संसार में कुछ भी प्राप्ति का लक्ष्य बनाना, याद रखिए ये कामना को मल्टीप्लाई करना, संसार में कुछ भी प्राप्ति की कामना करना ये मनुष्य को संसार में डूबने वाला है। इसीलिए सारे शास्त्र एक सूत्र से कह रहे हैं, तूने हर क्रिया इस प्रकार से करनी है कि तेरे अंदर निष्कामता आए, न कि कामना आए। हम बिगड़े हुए इंसान पैदा हुए, हमारी मन बुद्धि बिगड़ी हुई थी, लेकिन गुरु तो जानता है इस बात को, ईश्वर तो जानता है, उसने मुझको फिर भी मानव जन्म दिया। इसका मतलब मन बुद्धि का विकास मैंने करना था, मैं अपने शरीर का विकास करने लगा, सांसारिक जीवन का विकास करने लगा, उसको पता ही लगा मैं काम क्या गलती कर रहा। इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु की आज्ञा छिन छिन समाओ, कल्प कल्पना सकल मिटाओ। मैं जब सिमरन करना हो करता हूं तो मुझे अब मन की कल्पना ही तो परेशान करती है। हम सब में जो भी सिमरन करता होगा उसका ये अनुभव होगा। कितना भी प्रयास कर लो, 5 साल हो गए मुझे, 10 साल हो गए सिमरन करते करते, कल्पनाएं मेरी मिटती ही नहीं। क्यों नहीं मिटती है? क्योंकि मेरे अंदर सहनशीलता नहीं, या है तो बहुत कम है। और सहनशीलता भी कैसी? ऐसी नहीं कि जो मिल गया मैंने सहन कर लिया, ना ना, प्रभु हुक्म में सहन कर, प्रभु हुक्म में मैंने सहन करना था, मैं कर रहा हूं अपनी सामर्थ्य दिखाकर के, मैं तो देखो मैंने सहन कर दिया, ना ना, ये सहन करने का आध्यात्मिक तरीका नहीं है। इसलिए कह रहे हैं प्रभु की आज्ञा छिन्न छिन्न सुनाओ, हर क्षण तेरे शरीर से क्रिया हो रही है, हर क्षण तेरी पार्थिव की परिस्थितियां बदल रही है, तो तू तो परेशान होता रहेगा, क्योंकि मन एक परिस्थिति चाहता है दूसरी नहीं चाहता। हर वस्तु, हर स्थिति, हर परिस्थिति यहां पर द्वंद रूप है। तो द्वंद रूप का मतलब है उसके दो रूप है, जैसे सुख और दुख है, मिलना और बिछड़ना है, द्वंद रूप है, दिन है रात है, सर्दी है तो गर्मी है। तो हर चीज जब प्रकृति में द्वंद रूप है और तू उसमें से एक पसंद करता है तो हमेशा बेचैन रहेगा या नहीं रहेगा? साधारण विचार करके देख लो, हमेशा बेचैन रहेगा नहीं रहेगा? तो इसलिए तूने ईश्वर हुक्म में जीने की आदत बना दी। क्यों बनानी थी? क्योंकि तूने अंतर्यामी ईश्वर का अनुभव करना है, मन बुद्धि को उसमें लगाना है, उसमें स्थिर करना है। और ये तू संसार में आशा करता रहा तो ये काम कैसे करेगा? इसलिए संसार में तू फर्ज वाली जिंदगी व्यतीत करता है, अपने लिए कुछ लक्ष्य तैयार नहीं करता कि मैं नाम कमा लूंगा, मैं पैसा कमा लूंगा, मैं लंबी चौड़ी बिल्डिंग बना लूंगा, मैं जीवन में लोगों को सफल होकर दिखाऊंगा। तो लोगों को दिखाएगा तो ईश्वर को क्या लोग दिखाएगा? जो इंसान अपनी शक्ल को लोगों को दिखाएगा, उनके बीच में अपने आप को फेमस करेगा, वो अंदर ईश्वर को क्या शक्ल दिखाएगा? आपने कहां जाएगा वो? तो बेचैनी लेकर पैदा हुआ हूं, बेचैनी लेकर मैं जी रहा हूं, इसी बेचैनी को लेकर, इसकी कमाई करके मैं संसार से विदा होगा, तो क्या दुर्दशा मेरी होगी? इसीलिए बात करते हैं कि मन की कल्पना मैंने खत्म कर ली, तो ये कैसे खत्म होगी? जब ईश्वर हुक्म में तू संसार को सहन करने की कोशिश करे, संसार को बदलने की नहीं, संसार को सहन करने की कोशिश करेगा अपने वास्ते, और दूसरों के लिए क्या करेगा? परोपकार। और परोपकार कैसा? निष्काम होकर, परोपकार करके। कोई कामना मेरे मन में अपने वास्ते आनी ही नहीं चाहिए, यदि आ रही है, यदि कुछ चाह रहा हूं तो मुझको अलर्ट हो जाना चाहिए कि मेरी बुद्धि भ्रमित है, अब मेरी बुद्धि ये मेरा जीवन बर्बाद करेगी। ये होश इस बुद्धि को आ जाना चाहिए। तब कहते हैं कि जब तू प्रभु आज्ञा में सहन करेगा तब तेरे मन की कल्पनाएं धीरे धीरे शांत होने लगेगी, क्योंकि आशा संसार में रखी नहीं तूने कोई, तेरी सारी आशा जो है अंतर्यामी ईश्वर से मिलने की, उसके नजदीक जाने की, तू जीवन उसके लिए जी रहा है। तो इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता जो ईश्वर के लिए जीवन जिए भी और ईश्वर की कृपा उसको अंदर प्राप्त हो। तो अंत में कहते हैं कि विरत त्याग मन होए निष्कामी, सतस्वरूप मिले पार ग्रामी। वो सतस्वरूप इस देह के अंदर ही मुझको मिल जाता है, और मेरी जो बुद्धि की वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति का मतलब बुद्धि का जो निश्चय, बुद्धि का निश्चय और मन का संकल्प, याद रखिए हमेशा साथ रहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि बुद्धि की वृत्ति भी शांति आती है, बुद्धि का कोई लक्ष्य संसार में रहता ही नहीं, तो फिर मन के अंदर संकल्प कहां से रहेगा? तो कहते हैं विरत त्याग मन होए निष्काम, उसका मन निष्काम हो जाता है, मन के अंदर कोई कामना नहीं है, संकल्प किस बात का उठेगा? और बुद्धि के अंदर चेतना है, कॉन्शियसनेस है, ये चेतना ईश्वर के साथ एक हो जाती है, अर्थात बुद्धि भी निष्काम, मन भी निष्काम, ये जीव और ईश्वर एक हो जाता है, वो इसकी समाधि की हालत है। तो कहते हैं कि सत स्वरूप मिले पार ग्रह, इस प्रकार ये ईश्वर के साथ मिलकर एक हो जाता है और मानव जन्म सफल कर लेता है। ओम ब्रह्म सत्य सत्य।